यहोशू अध्याय 23। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इसराइलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया। यहोशू 23 अध्याय पहला पद। बहुत दिनों अर्थात प्रतिज्ञा के देश के लगभग 17 वर्ष बाद और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया। यहोशू 23 पहला पद। मूसा मरते दम तक हृष्टपुष्ट था, उसका बल अंत समय तक कम नहीं हुआ था। कालेब भी यहोशू से अधिक स्वस्थ था, वो 125 वर्ष की आयु तक बलवंत था कि युद्ध करके अपनी विरासत को जीत पाए। उसने खुद कहा था कि वो उतना ही हृष्टपुष्ट है जितना वो कनान की यात्रा के समय था, परंतु यहोशू का स्वास्थ्य डल गया था। उसे सुनने में कठिनाई आ रही थी, वो दुर्बल भी हो गया था, उसे चलने में भी कठिनाई हो रही थी। हम नहीं जानते कि परमेश्वर का क्या उद्देश्य होता है जब वो कुछ लोगों को मरते दम तक हृष्टपुष्ट रखता है और कुछ लोगों को निडाल कर देता है। तो क्या हम ये कहें कि यहोशू कम धर्मी था या परमेश्वर उससे कम प्रेम रखता था और कालेब से अधिक? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य को परमेश्वर, विश्वास और परमेश्वर के संबंधों से कोई सरोकार नहीं होता है, ना ही वो परमेश्वर के प्रेम के अनुपात में होता है। मेरे विचार में पुराने नियम में एलिशा के तुल्य विश्वासी और चमत्कारी अन्य कोई नहीं था, परंतु वो आत्मिकता का पुतला रोगी होकर मर गया। क्या परमेश्वर अपनी संतान को रोगी होने देता है? क्या परमेश्वर अपनी संतान को बूढ़ा होने देता है? निश्चय ही हाँ, कुछ लोग बढ़ती आयु के साथ ढल जाते हैं। जी हाँ, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अंत समय तक स्वस्थ रहते हैं? मैं नहीं जानता। मैं केवल ये जानता हूं कि परमेश्वर अनेक बार अपनी संतान को कष्ट उठाने देता है। हमारे लिए ये निष्कर्ष निकालना कि स्वस्थ मनुष्य अधिक धर्मपरायण है और दुर्बल जन की धार्मिकता निम्न स्तर की है उचित नहीं है। अब नए नियम में देखिए कि हेरोदेस ने यूहन्ना के भाई याकूब का सिर कलम करवा दिया था, और जब उसने देखा कि यहूदी उसके इस काम से प्रसन्न है, तब उसने पत्रस को भी बंदीगृह में डलवा दिया कि अगले दिन उसका सिर कटवा दे। परंतु कलीसिया की अथक प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर उसे बंदीगृह से निकलवा लिया, और पत्रस ने सोचा कि वो स्वप्न देख रहा है, परंतु वो वास्तविकता थी। वो सीधा वहां गया जहां कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। ये कलीसिया का विश्वास ही था कि पत्रस बच गया। वो सीधा उस घर के द्वार पर गया जहां उसके लिए प्रार्थना की जा रही थी। प्रभु, पत्रस की सहायता कर, पत्रस को मुक्ति दिला, पत्रस को बचा ले। उसने द्वार खटखटाया, दासी ने द्वार खोला और पत्रस ने कहा, मुझे भीतर आने दे। दासी ने जाकर भीतर संदेश दिया कि पत्रस आया है। उन्होंने कहा, तू पागल हो गई है। परंतु पत्रस खटखटाता रहा। उन्होंने देखा कि वो निश्चय ही पत्रस था। अब आप ये नहीं कह सकते कि कलीसिया का विश्वास था कि प्रार्थना के द्वारा पत्रस को बंदीगृह से मुक्ति मिली। तो इसका क्या अर्थ माने? क्या परमेश्वर याकूब से अधिक पत्रस से प्रेम रखता था? क्या परमेश्वर याकूब को भी इसी रीति से बचा नहीं सकता था? निश्चय ही बचा सकता था, परंतु पत्रस के जीवन में उसका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। अंत में पत्रस को भी क्रूस पर उल्टा लटकाया गया था। अब परमेश्वर ने उसे नहीं बचाया। क्या उसका विश्वास अब कम हो गया था? नहीं, उसके जाने का समय आ गया था। हमारे जाने का समय भी आएगा और हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमें कैसे ले जाएगा। मृत्यु हमारी पराजय नहीं है। हमारा ये दृष्टिकोण गलत है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। उसने हमें अनुपम प्रतिज्ञाएं दी है। वो हमारी सुधि लेगा, हमें शक्ति देगा, हमें चंगाई देगा। परंतु जब हमारे जीवन में उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब वो हमें इस पतित संसार से निकालकर अपने साथ स्वर्ग में रहने का वरदान देता है। ये पराजय नहीं, हमारी विजय है। कुछ लोग अकस्मात ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, शरीर हष्टपुष्ट होता है, परंतु या तो उन्हें दिल का दौरा पड़ता है या वे दुर्घटना में मर जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि क्यों परमेश्वर किसी को बचपन में, किसी को जवानी में और किसी को बुढ़ापे में उठा लेता है। मेरा पिता और मेरे भाई की हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हम सोचने लगे कि मेरा पिता सेवानिवृत्त तो थे, परंतु अभी और 10 वर्ष जी सकते थे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और वो सक्रिय भी थे। मेरा भाई जो 24 वर्ष का था और हष्टपुष्ट जवान थे, अच्छा खिलाड़ी था, उसके सामने तो पूरा जीवन था। वो क्यों मर गया? ये तो परमेश्वर के तरीके हैं, इन्हें हम नहीं समझते हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारी बुद्धि से परे हैं। अतः परमेश्वर से क्यों का उत्तर खोजना व्यर्थ है। मैं परमेश्वर से पूछे गए क्यों को नहीं समझता, ना ही उसकी खोज में भटकना चाहता हूं, क्योंकि ऐसी खोज ऊर्जा विनाशक है। परमेश्वर के तरीकों को स्वीकार कर लो। परमेश्वर जानता है कि सबसे अच्छा क्या है। अतः मैं सब कुछ परमेश्वर के हाथों में छोड़ देता हूं। पिछले सप्ताह मैंने 2 दफन किए। एक 55 वर्षीय खिलाड़ी जिसे बर्फ पर स्कीइंग करते हुए दिल का दौरा पड़ा, और दूसरा 19 दिन के बच्चे का। अब परमेश्वर से पूछे क्यों, तो ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि आप कारण कभी नहीं जान पाएंगे। यहोशू परमेश्वर से प्रेम रखता था। वो परमेश्वर का वफादार सेवक था। परमेश्वर भी उससे प्रेम रखता था, परंतु वो उम्र और स्वास्थ्य में डल गया था। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि परमेश्वर से प्रेम रखना, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर में विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना आपके शारीरिक विकारों के निवारण की गारंटी नहीं लेते हैं। मैं कुछ बहुत ही अच्छे विश्वासियों को जानता हूं जिनके साथ स्वास्थ्य संबंधी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उनके विश्वास में कोई कमी है या उनके समर्पण या भक्ति में कोई कमी है। उसका अर्थ दूसरी ओर ये भी हो सकता है कि उनका समर्पण और भक्ति इतनी गहरी है कि उनके साथ ऐसा होता है जो आपको स्वीकार्य नहीं, और आप परमेश्वर को बुरा भला कहते हैं, परंतु परमेश्वर जानता है कि उनमें वो गहराई और गुण है कि वे ऐसी घटना को सहन कर लेंगे। अतः आप उन्हें हीन समझने की मूर्खता ना करें। परमेश्वर के अति प्रिय संतानों ने घोर यातना सही और कष्ट उठाया। परमेश्वर जानता था कि उनमें सहन शक्ति थी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं स्वस्थ हूं। हो सकता है कि मैं वो निर्बल आत्मिक व्यक्ति हूं जो बीमार होते ही परमेश्वर को पुकार पुकार कर दुखी कर दूंगा। मेरी यही प्रार्थना है कि अस्वस्थ होने पर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूं। मुझमें आत्मिक अनुग्रह की आवश्यकता है कि दुर्बलता और रोगी अवस्था में भी मेरा मन परमेश्वर का आभार व्यक्त करे। परंतु सत्य तो यह है कि आप स्वास्थ्य और आत्मिकता की तुलना नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैंने तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय दूसरा पद नहीं पढ़ा, जहां लिखा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय दूसरा पद। परमेश्वर आपको समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करना चाहता है। मैं जानता हूं ये एक व्यक्तिगत पत्र है जिसमें शुभ कामना लिखी गई है। ये एक कामना है, परमेश्वर के उद्देश्यों की घोषणा नहीं। बाइबल के आधार पर आप शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि प्रार्थना द्वारा रोगी चंगाई पाते हैं, और आप मेरे सामने एक प्रश्न रख देते हैं, अब क्या हम उनकी चंगाई की आशा रखें या ना रखें? क्यों नहीं विश्वास की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उन्हें खड़ा कर देता है? परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि कोई बूढ़ा ही नहीं होगा। आप ये न सोचे कि बादलों में उठाए जाने से पूर्व आप मौत से बच जाएंगे। ये सोचना सर्वथा अनुचित है कि परेशानियों, निराशा, शारीरिक कष्ट, दुर्घटना आदि से हमें ईश्वरीय प्रतिरोध प्राप्त है। परमेश्वर दया करें, वो मेरे साथ भला है। आप परमेश्वर से प्रश्न करके उत्तर नहीं पा सकते। मैं वर्षों इस उधेड़ बुन में लगा रहा। मैं एक धार्मिक परिवार में बड़ा हुआ था। मेरी माता ईश्वर भक्त थी। मेरे पिता पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित थे। मैंने उनमें बड़ी व्यक्तिगत गवाहियां देखी। वे हमेशा प्रभु की साक्षी देते रहते थे। अतः मेरा पारिवारिक वातावरण परमेश्वर में विश्वास और आस्था पर आधारित था। मुझे तो आज तक वो पल याद नहीं कि हमने परमेश्वर में विश्वास न रखा हो या उसे प्रेम तोड़ा हो। मुझे आज भी ध्यान है कि जब मैं बालक था, मैं अपनी साइकिल पर जा रहा था और आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि मुझे अचानक अपनी घरेलू शिक्षा का ध्यान आया कि प्रार्थना में आंखें बंद रखते हैं। मैंने आंखें बंद कर ली, जिसका नतीजा ये निकला कि मैं एक मोटर कार से जा टकराया। मैं परमेश्वर से लड़ पड़ा कि उसने मुझे कार से क्यों टकराने दिया। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं इतना आत्मिक हूं तो तूने मुझे सुरक्षित क्यों नहीं रखा? यहां समस्या क्या आ गई? स्वर्ग दूतों ने मुझे क्यों नहीं संभाला? मुझे इसी समय ध्यान आया कि परमेश्वर कहता है, जैसे मेरी पोती कहती है, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, मुझे इसे काम में लेना है। अतः हम मूर्खता ना करें और परमेश्वर से क्यों पूछना छोड़ दें। यहोशु बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया था। तब यहोशु सब इसराइलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूं। यहोशु 23 दूसरा पद। ये यहोशु का नकारात्मक अंगीकार है, परंतु ये एक सत्य कथन है और सच्चाई को झूठ के द्वारा ढापा नहीं जाना चाहिए। मुझे कमजोरी लग रही है तो मैं क्यों न कह दूं कि मुझे कमजोरी लग रही है? यहोशु स्पष्टवादी था कि वो बूढ़ा और दुर्बल हो गया है। वो लाठी के सहारे से चल रहा होगा। उसने इसराइल के वंशजों को परमेश्वर के उपकार गिनाए, और तुमने देखा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है। क्योंकि जो तुम्हारी ओर लड़ता आया है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने या वृद्ध यहोशू इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यर्दन से लेकर सूर्य अस्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाली उन सब जातियों को भी ऐसे ही दिया है जिनको मैंने काट डाला है, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत हियाव बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरे करने में चौकसी करना, उससे ना तो दहने मुड़ना और ना बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई है इनके बीच ना जाना और ना इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना और ना उनकी शपथ खिलाना और ना उनकी उपासना करना और ना उनको दंडवत करना। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा करना। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली है और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य हजार मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समदियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पंजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। यहोशू 23:3-10 और 12-13 पद। यहोशू उन्हें निर्देश दे रहा था जिसमें मुख्य बात ये थी कि वे वहां के निवासियों से अलग रहें, उनसे विवाह ना करें। आप ये न सोचे कि परमेश्वर अंतर जातीय विवाह का विरोधी है। परमेश्वर उस जाति को सुरक्षित इसलिए रख रहा था कि उसका पुत्र इस जाति के द्वारा पृथ्वी पर आए। आज उसने मसीह यीशु में ही प्रत्येक जाति को एक कर दिया है, यहूदी हो या अन्य जाति, बर्बर या स्कूती, स्वतंत्र या दास, सब मसीह में एक और नई सृष्टि है। अब वो कहता है, सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूं, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही, वे सब की सब तुम पर घट गई है, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में विश्वास योग्य है। तो जैसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी है, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर घटाते घटाते यदि आज्ञा पालन में चूके तो तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है सत्यनाश कर डालेगा। जब तुम उस वाचा को जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है उल्लंघन करके पराए देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे देश में से जिसे उसने तुमको दिया है शीघ्र नाश हो जाओगे। यहोशू 23:14-16 पद। जिस प्रकार यहोवा ने अपनी प्रजा की चौकसी भलाई की बातों में की है, उसी प्रकार वो ये भी घोषणा करता है बुराई की बातों में भी वो उन पर निगरानी रखेगा। अतः यहोवा से लिपटे रहो, उसे प्रेम रखो और उसकी सेवा करो।